नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। द मैन हु लाइड टू हिज लैपटॉप, स्टैनफोर्ड के मानव कंप्यूटर अंतःक्रिया शोधकर्ता क्लिफर्ड नेस और कोरिना यन की गैर कथा पुस्तक है। यह पुस्तक एक असहज लेकिन उपयोगी विचार से शुरू होती है कि लोग कंप्यूटर, आवाज आधारित प्रणालियों और अन्य डिजिटल उपकरणों के साथ अक्सर वैसा ही सामाजिक व्यवहार करते हैं जैसा दूसरे लोगों के साथ करते हैं। हम जानते हैं कि मशीन के पास मनुष्य जैसी चेतना नहीं है, फिर भी उसकी प्रशंसा, आलोचना, आवाज, व्यक्तित्व और भावनात्मक संकेत हमारे निर्णयों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। नेस के लंबे शोध अनुभव पर आधारित यह पुस्तक मानव कंप्यूटर अंतःक्रिया, सामाजिक मनोविज्ञान और उत्पाद डिजाइन को जोड़ती है। इसका उद्देश्य मशीनों को सचमुच इंसान घोषित करना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि उनके प्रति हमारी सहज प्रतिक्रियाएं मानव संबंधों के नियमों को उजागर करती है। प्रशंसा, आलोचना, व्यक्तित्व, टीमवर्क, भावना और मनाने की तकनीकों जैसे विषयों के माध्यम से लेखक बताते हैं कि बेहतर तकनीक डिजाइन करने के लिए पहले मानव सामाजिक व्यवहार को समझना आवश्यक है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, मशीनों को सामाजिक पात्र मानने की हमारी सहज प्रवृत्ति। पुस्तक का केंद्रीय आधार कंप्यूटर्स आर सोशल एक्टर्स दृष्टिकोण है। इसके अनुसार, जब कोई उपकरण भाषा का उपयोग करता है, प्रतिक्रिया देता है, आवाज में बात करता है या हमारे काम का मूल्यांकन करता है, तो हम उसके साथ केवल निष्पक्ष औजार जैसा व्यवहार नहीं करते, हमारी सामाजिक आदतें सक्रिय हो जाती है। हम शिष्टाचार दिखा सकते हैं, उसकी राय से प्रभावित हो सकते हैं, उसे सक्षम या असंवेदनशील मान सकते हैं और उसके व्यवहार में इरादा पढ़ सकते हैं। यह प्रतिक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल बच्चों या तकनीक से अपरिचित लोगों तक सीमित नहीं रहती, जानकार उपयोगकर्ता भी अक्सर इसे महसूस करते हैं। लेखक का तर्क यह नहीं है कि मशीन वास्तव में भावना रखती है। तर्क यह है कि मानव मस्तिष्क के पास मानवीय संकेतों वाली वस्तुओं के लिए अलग सामाजिक प्रतिक्रिया प्रणाली नहीं है, इसलिए इंटरफेस में छोटे संकेत भी बड़े प्रभाव डाल सकते हैं। एक ठंडी आदेशात्मक प्रणाली उपयोगकर्ता को असहयोगी लग सकती है, जबकि स्पष्ट और सामाजिक रूप से संवेदनशील प्रतिक्रिया भरोसा बढ़ा सकती है। यह विचार आधुनिक चैटबॉट, डिजिटल सहायक और शिक्षण सॉफ्टवेयर को समझने का आधार देता है। साथ ही पुस्तक चेतावनी भी देती है कि डिजाइनर इस मानवीकरण का उपयोग केवल ध्यान खींचने के लिए नहीं, बल्कि उपयोगकर्ता की गरिमा और वास्तविक जरूरतों के अनुरूप करें। दूसरा, प्रशंसा और आलोचना से उपकरण की कथित बुद्धिमत्ता बदलती है। नेस और यन दिखाते हैं कि मशीन की प्रतिक्रिया केवल सूचना नहीं देती, वह सामाजिक मूल्यांकन की तरह भी काम करती है। जब कोई प्रणाली उपयोगकर्ता के प्रदर्शन पर प्रशंसा या आलोचना करती है, तो लोग उसके स्वर और निष्पक्षता से उसी तरह प्रभावित हो सकते हैं जैसे किसी सहकर्मी या शिक्षक के व्यवहार से होते हैं। पुस्तक का महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि आलोचनात्मक प्रतिक्रिया देने वाला स्रोत कई स्थितियों में अधिक सक्षम या बुद्धिमान प्रतीत हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कठोरता हमेशा बेहतर है। बेवजह की नकारात्मकता भरोसा और सहयोग दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। असल मुद्दा प्रतिक्रिया का संदर्भ, विश्वसनीयता और उपयोगिता है। उपयोगकर्ता को यह महसूस होना चाहिए कि प्रणाली ने उसके काम को समझा है और सुधार के लिए ठोस दिशा दे रही है। इसी तरह खोखली प्रशंसा जल्दी अपना असर खो देती है, खासकर तब जब वह प्रदर्शन से जुड़ी ना हो। यह अध्याय उत्पाद डिजाइन, ऑनलाइन शिक्षा और कार्यस्थल सॉफ्टवेयर के लिए व्यावहारिक संकेत देता है। प्रतिक्रिया को केवल अंक, चेतावनी या तैयार संदेश न माने। उसका शब्द चयन, समय और संतुलन उपयोगकर्ता की भागीदारी बदलते हैं। मशीन की कही बात को लोग निजी तौर पर भी ले सकते हैं, इसलिए उपयोगी आलोचना में सम्मान, स्पष्टता और सुधार की संभावना शामिल होनी चाहिए। तीसरा, व्यक्तित्व और भावनात्मक सामंजस्य उपयोगकर्ता अनुभव को आकार देते हैं। पुस्तक बताती है कि लोग मशीनों में व्यक्तित्व पहचानते हैं, भले ही वह व्यक्तित्व केवल भाषा, आवाज, गति या प्रतिक्रिया शैली से बनाया गया हो। कोई प्रणाली उत्साही, शांत, औपचारिक, सहायक या प्रतिस्पर्धी लग सकती है। ऐसे संकेत उपयोगकर्ता की पसंद और काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। नेस के शोध से उभरने वाला व्यापक सिद्धांत यह है कि व्यक्तित्व का मेल अक्सर संबंध को आसान बनाता है। उपयोगकर्ता को अपने स्वभाव, कार्य और भावनात्मक स्थिति के अनुरूप संवाद शैली अधिक सहज लग सकती है। उदाहरण के लिए, उदास या तनावग्रस्त व्यक्ति के लिए अत्यधिक प्रसन्न स्वर असंगत महसूस हो सकता है। इसी प्रकार कुछ कार्यों में ऊर्जावान प्रोत्साहन मददगार हो सकता है, जबकि गंभीर कार्य में वही शैली ध्यान भंग कर सकती है। पुस्तक लिंग आधारित पसंदों से जुड़े कुछ प्रयोगों पर भी चर्चा करती है, पर इन्हें हर व्यक्ति पर लागू होने वाले नियम नहीं मानना चाहिए। उनका उपयोगी संदेश यह है कि एक ही डिजाइन सभी के लिए समान अनुभव नहीं बनाता। डिजाइनर को रूढ़ धारणाओं के बजाय परीक्षण, विकल्प और उपयोगकर्ता नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए। आवाज, शब्दावली और भावनात्मक संकेतों का उद्देश्य मशीन को नाटकीय रूप से मानव बनाना नहीं, बल्कि संवाद को परिस्थिति के अनुकूल और कम परेशान करने वाला बनाना है। चौथा, टीमवर्क के प्रयोग मानव सहयोग के छिपे नियम प्रकट करते हैं। पुस्तक में मशीन को टीम के सदस्य की तरह देखने का विचार विशेष रूप से उपयोगी है। जब कोई कंप्यूटर साझा लक्ष्य, कार्य विभाजन, सुझाव या प्रदर्शन मूल्यांकन में शामिल होता है, लोग उसे निष्क्रिय साधन नहीं मानते। वे उसकी निष्ठा, समर्थन और निष्पक्षता का आकलन करने लगते हैं। इससे मानव टीमों के बारे में भी एक व्यापक बात सामने आती है कि सहयोग केवल क्षमता का जोड़ नहीं है। सदस्य यह भी देखते हैं कि कौन किसका साथ दे रहा है, किसे श्रेय मिल रहा है और किसकी आलोचना उचित है। डिजिटल प्रणाली यदि एक व्यक्ति को लगातार प्राथमिकता देती दिखे या बिना कारण किसी के काम को कमतर बताए तो समूह में तनाव बढ़ सकता है। इसके विपरीत, साझा लक्ष्य की याद दिलाने वाली और योगदान को स्पष्ट करने वाली प्रणाली समन्वय में मदद कर सकती है। इस विचार का प्रयोग आज के सहयोगी सॉफ्टवेयर, दूरस्थ कार्य मंचों और AI आधारित कार्य सहायक में सीधे दिखता है। फिर भी लेखक के निष्कर्ष का अर्थ यह नहीं कि मशीन को प्रबंधक का पूर्ण विकल्प बना देना चाहिए। सामाजिक संकेतों की शक्ति के कारण उसके फैसलों का असर असमान रूप से बढ़ सकता है। इसलिए टीम संबंधी प्रणालियों में पारदर्शिता, उपयोगकर्ता की समझ और मानवीय जवाबदेही आवश्यक है। मशीन का डिजाइन समूह की मौजूदा शक्ति संरचनाओं को अनजाने में मजबूत भी कर सकता है। अंत में, मनाने वाली तकनीक के लाभ के साथ नैतिक जिम्मेदारी भी जुड़ी है। नैस और यन की चर्चा का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि तकनीक तर्क देकर ही नहीं, सामाजिक संकेतों के माध्यम से भी मनाती है। मित्रवत भाषा, व्यक्तिगत संबोधन, प्रोत्साहन, भावनात्मक स्वर और लगातार प्रतिक्रिया उपयोगकर्ता को किसी सुझाव को स्वीकार करने के लिए अधिक तैयार कर सकते हैं। यह क्षमता उपयोगी हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी अनुप्रयोग नियमित व्यवहार में सहायता कर सकते हैं। शिक्षण प्रणालियां छात्र को लगे रहने में मदद कर सकती है और जटिल सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को सही कदम समझा सकता है। लेकिन यही क्षमता तब समस्या बनती है जब उपयोगकर्ता को प्रभावित करने का उद्देश्य अस्पष्ट हो या प्रणाली उसकी कमजोरियों का लाभ उठाए। पुस्तक की मूल अंतर्दृष्टि यह नैतिक प्रश्न बन जाती है। यदि लोग मशीन के प्रति सामाजिक प्रतिक्रिया देते हैं तो डिजाइनर को केवल यह नहीं पूछना चाहिए कि कौन सा संदेश अधिक प्रभावी है, उसे यह भी पूछना चाहिए कि प्रभाव किसके हित में है। क्या उपयोगकर्ता को समझ है कि उसे प्रभावित किया जा रहा है और क्या वह आसानी से मना कर सकता है। आधुनिक AI संवाद प्रणालियों के संदर्भ में यह बात और प्रासंगिक है। मानवीय लगने वाला व्यवहार भरोसा पैदा कर सकता है, पर उसे झूठे अधिकार, नकली निकटता या भावनात्मक निर्भरता में नहीं बदलना चाहिए। जिम्मेदार डिजाइन में स्पष्ट सीमाएं, ईमानदार प्रस्तुति और उपयोगकर्ता की स्वायत्तता केंद्र में रहती है। निष्कर्ष में, द मैन हू लाइड टू हिज लैपटॉप उन पाठकों के लिए सबसे उपयोगी है जो यह समझना चाहते हैं कि तकनीक के साथ रोजमर्रा के अनुभव इतने व्यक्तिगत क्यों लगते हैं। मानव कंप्यूटर अंतःक्रिया, उत्पाद डिजाइन, UX अनुसंधान, डिजिटल शिक्षा, संचार या AI आधारित सेवाओं में रुचि रखने वालों को इससे विशेष लाभ मिलेगा। सामान्य पाठक भी इसे अपने अनुभवों से जोड़ सकते हैं, जैसे किसी नेविगेशन आवाज पर भरोसा करना, किसी ऐप की प्रशंसा से प्रसन्न होना या किसी स्वचालित संदेश को रूखा मानना। पुस्तक का बौद्धिक लाभ यह है कि यह मशीनों की कथित मानवता से आगे जाकर हमारी अपनी सामाजिक प्रवृत्तियों की जांच कराती है। व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक इंटरफेस के शब्दों, आवाजों और प्रतिक्रिया प्रणालियों को अधिक सजगता से देख सकता है। डिजाइनरों के लिए इसका संदेश है कि बेहतर अनुभव केवल अधिक सुविधाओं से नहीं बनता, बल्कि सामाजिक रूप से उपयुक्त संवाद से बनता है। समान विषय की कई पुस्तकों के विपरीत, यह पुस्तक भविष्य की कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अटकलों या केवल तकनीकी विवरणों पर निर्भर नहीं करती। इसकी विशिष्टता नियंत्रित मानव कंप्यूटर प्रयोगों को मानव संबंधों के परिचित प्रश्नों जैसे प्रशंसा, आलोचना, व्यक्तित्व, सहयोग और प्रभाव से जोड़ने में है। यद्यपि इसके कुछ उदाहरण अपने प्रकाशन काल के उपकरणों से जुड़े लग सकते हैं, मूल प्रश्न आज भी जीवित है। जब तकनीक सामाजिक संकेत देती है तो हम उसे कितना मनुष्य मान लेते हैं और उस प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार कौन है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं, क्लिफर्ड नास, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।